दिन भर 30 अक्टूबर बुधवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। यूरोपीय संघ के सांसद पहुंचे जम्मू कश्मीर, विपक्षी नेताओं ने उठाए सवाल।
चीफ मिनिस्टर की बेटी को मिलना है अपनी माँ से तो उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता, और आप जो है फासिस्ट और इस्लामोफोबिया की जहन रखने वाले एमपीस को लाकर कश्मीर ले जा रहे हैं।
जानेंगे कुलगाम का हाल, जहां चरमपंथियों ने की 5 मजदूरों की हत्या।
सुबह रात को गया उसको पछलाने के लिए, तब जब सुना कि फायरिंग चालू हो गया फिर उसके घर में रोक दिया हम लोग।
और आज दुनिया जहां में पड़ताल करेंगे चिली में हो रहे ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शनों की वजहों की।
जो चिली में भी हो रहा है वो एक वहाँ पे क्रांति हो रही है उस सरकार के प्रति, उस समानता के विरोध में। और
लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। यूरोपीय संघ के 23 सांसदों के जम्मू और कश्मीर दौरे पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी पार्टियों ने पूछा है कि देश के सांसदों और एक्टिविस्टों को तो मोदी सरकार कश्मीर नहीं जाने दे रही, लेकिन विदेशी सांसदों को कश्मीर भेज रही है। मंगलवार को यह समूह श्रीनगर पहुंचा और भारतीय सेना के अधिकारियों से मुलाकात की। इन सांसदों ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है और वो उसे सुलझा लेगा। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार ने भारत की कूटनीति को एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस ब्रोकर के हाथों गिरवी रख दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट पर बने गतिरोध को तोड़ने के लिए मध्य अवधि चुनाव के लिए लाए जा रहे विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। उनकी सरकार की ओर से मध्य अवधि चुनाव कराए जाने की ये चौथी कोशिश है। उनकी सरकार चाहती है कि 12 दिसंबर को आम चुनाव कराए जाएं। संसद में इसे लेकर जल्द ही मतदान होना है। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि वो आम चुनाव के लिए तैयार हैं।
Whatever date the House decides the election will be, I'm ready for it. We're
सदन चुनाव की जो भी तारीख तय करेगा हम तैयार हैं, क्योंकि हम इस देश की जनता से कहना चाहते हैं कि सरकारी खर्चों में कटौती का विकल्प है, गैर बराबरी का विकल्प है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर्मजोशी वाले व्यापारिक समझौतों का विकल्प है, इस सरकार का विकल्प है। एक ऐसी सरकार जो हमारे समाज से अन्याय खत्म करने और युवाओं में एक उम्मीद भरने के लिए प्रतिबद्ध है। ये थे लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के शब्द। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के 13 दिनों बाद लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। उनकी ये घोषणा हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू होने के तुरंत बाद आई। वहीं राजधानी बेरूत में 2 शिया समूहों के समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने हिजबुल्ला के नेता नसरल्ला के समर्थन में नारे लगाए। इस बीच लोगों ने हरीरी के इस्तीफे का स्वागत किया है। एक प्रदर्शनकारी तारेक हिजाजी ने कहा, हरीरी का इस्तीफा एक लोकतांत्रिक देश बनाने की ओर पहला कदम है, ताकि 17 अक्टूबर से पैदा हुए जनउभार की मांगों को पूरा किया जा सके। इसकी सफलता अब सामने आ रही है, अब हमें दूसरी उपलब्धि की ओर बढ़ना है। प्रदर्शनकारी तारेक हिजाजी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। व्हाइट हाउस के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि जो बाइडेन और उनके बेटे की जांच के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव बनाया था और वो उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। यूक्रेन के मामलों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर विंडमैन ने यह दावा ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जाँच कर रही समिति के सामने किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और यूरोपीय संघ में अमरीकी राजदूत ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के खिलाफ कड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा था। इराक के प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। शिया धार्मिक नेता मुक्तता अल सद्र ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने और मध्य अवधि चुनाव कराए जाने की मांग की है, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया है। इराक में हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी नौकरी, बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं और सरकार में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक 18 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सरकार ने इससे इनकार किया है। रूस ने तुर्की से कहा है कि उत्तर पूर्वी सीरिया में प्रस्तावित सुरक्षित जोन को कुर्द लड़ाकों ने खाली कर दिया है। तुर्की ने अपनी सीमा के पास सीरिया में एक सुरक्षित जोन बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। रूस की मध्यस्थता के बाद तुर्की समय सीमा देने पर राजी हो गया था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। यूरोपीय संघ के 23 सांसदों के अनौपचारिक प्रतिनिधिमंडल का जम्मू कश्मीर दौरा आज समाप्त हो गया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का ये पहला कश्मीर दौरा था। हालांकि ये यूरोपीय संघ का आधिकारिक दौरा नहीं है। इस प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर की डल झील में शिकारे पर सैर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसदों ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मसला है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में वो उसके साथ हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल फ्रांस के हेनरी मलूस ने कहा,
But another issue we consider that the change of the statutes, the article 370.
अगर हम अनुच्छेद 370 की बात करें तो ये भारत का अंदरूनी मामला है। हमें चिंता आतंकवाद की है जो एक वैश्विक खतरा है और इस लड़ाई में हमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। आतंकियों द्वारा 5 निर्दोष मजदूरों के मारे जाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये थे प्रतिनिधिमंडल में शामिल हेनरी मलूस के शब्द। यूरोपीय संघ के इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब देश के सांसदों को कश्मीर जाने नहीं दिया जा रहा है, तब ये प्रतिनिधिमंडल क्यों गया और कश्मीर मुद्दा देश का आंतरिक मसला है। वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के राजनीतिक रुझान पर सवाल उठाए। इस प्रतिनिधिमंडल में अधिकतर दक्षिणपंथी पार्टियों से जुड़े नेता हैं। ओवैसी ने कहा,
इनके सरकार के तो नहीं है, यूरोपियन यूनियन के ताल्लुक ही नहीं है। ये अपने प्राइवेट कैपेसिटी में आए, किसी एनजीओ ने उनको बुलाया, आखिर वो कौन सा एनजीओ है बताइए। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर की बेटी को मिलना है अपनी मां से तो उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता। और आप जो है फासिस्ट और इस्लामोफोबिया के जहन रखने वाले MPs को लाकर आप कश्मीर ले जा रहे हैं।
यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल का दौरा कैसा रहा और उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात की, इसकी जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से BBC संवाददाता रियाज मसरूर।
जी देखें, ये प्रतिनिधिमंडल तो कल यहाँ पहुंचा था श्रीनगर हवाई अड्डे से। वो सीधे यहाँ 15वीं कोर के हेडक्वार्टर में गया, आर्मी हेडक्वार्टर, और वहाँ पे उनको जो सीनियर सैन्य अधिकारी थे उन्होंने उनको ब्रीफ किया कंट्रोल लाइन पर जो स्थिति है उसके बारे में, और उसके बाद जो यहाँ अंदरूनी हालात है उसके बारे में भी, जो सिक्योरिटी परसेप्शन है यहाँ का, जो थ्रेट्स हैं उसके बारे में उनको जो है जानकारी दी गई। और उसके बाद वो यहाँ एक 5-स्टार होटल में गए जहाँ पे उनको कुछ BDC जो चुने हुए परसों के चुनाव में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स उनकी मुलाकात कराई गई और कुछ लोग भी उनसे मिले, लेकिन ज्यादा संख्या में लोग वहाँ देखे नहीं गए। और उसके बाद उनको यहाँ जो जम्मू कश्मीर राज्य का प्रशासन है उन्होंने यहाँ के पिछले 3 महीने के हालात का ब्यौरा उनके साथ शेयर किया। और आज सुबह वो जो है सीधे पहले डल लेक में थोड़ा सा उन्होंने टहल लिया, उसके बाद एयरपोर्ट गए। वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड तरीके पे उन्होंने प्रेस से बात की, क्योंकि ये प्रशासन ने वहाँ पे बाकी लोगों को या स्थानीय पत्रकारों को अनुमति नहीं दी वहाँ पर जाने की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही ब्रीफ तरीके से उन्होंने कहा, जिसमें जेम्स वेल थे, अलेक्जेंडर फिलिप थे, बिल न्यूटन थे, मैथिन गिल थे, गियाना गांसिया थी। और चूंकि 20-22 लोगों का ये प्रतिनिधि मंडल था, इनमें 4 लोग उनके इंटरप्रेटर्स थे, और कुल मिला के उन्होंने जो आतंकवाद है उस पर कंसर्न जताया और कहा कि ये सिर्फ भारत या किसी और देश का मसला नहीं बल्कि पूरे विश्व का मसला है और इस वैश्विक मसले पर एक साथ एकजुट लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और ये भी कहा कि कश्मीर में अगर प्रोटेस्ट हो भी जाए, अगर विरोध प्रदर्शन होते हैं तो वो आतंकवाद के विरुद्ध होने चाहिए। और ये भी जताया कि कश्मीर की स्थिति जो है कहीं उस डगर पर न पहुंच जाए कि यहाँ अफगानिस्तान बन जाए। और ये भी कहा कि उन्हें प्रशासन ने बताया है कि कश्मीर में जो करप्शन है वो बहुत पुराना है और बड़ी बीमारी के तौर पर है, उसके विरुद्ध जो प्रशासन ने किया है उन्होंने कहा कि हमें ये भी बताया गया। साथ ही उन्होंने ये भी मान लिया कि उन्हें ये एहसास है कि वो ज्यादा लोग उसे नहीं मिले। हालांकि पहले प्रशासन ने बताया था कि वो जम्मू और लद्दाख का भी दौरा करेंगे, लेकिन वो श्रीनगर से सीधे जो हैं दिल्ली के लिए रवाना हुए।
यूरोपीय संघ के सांसदों का कश्मीर दौरा, अधिक जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर। भारत प्रशासित कश्मीर के कुलगाम में कल एक चरमपंथी हमले में 5 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। मारे गए सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के हैं। हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर ने आज कुलगाम का दौरा किया, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
मंगलवार शाम को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिला के कात्रुसु इलाके में वेस्ट बंगाल के 5 मजदूरों को उस समय कुछ संदिग्ध चरमपंथियों ने गोलियों का निशाना बनाया जब वो काम से लौटकर किराए के कमरे में पहुंच गए थे, जिस दौरान संदिग्ध चरमपंथी उनके कमरे में दाखिल हो गए और उन्हें पास की एक गली में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है जिनका श्रीनगर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारे गए मजदूरों के एक रिश्तेदार सदा सहगल ने BBC को बताया।
मेरा एक भतीजा था, एक चाचा का बेटा और सब पड़ोसी, मेरे पड़ोसी सब। हाँ, लेकिन जब हम दूसरा आदमी के पास पैसा पड़ा था तो सुबह रात को गया उसको पैसा लाने के लिए। हाँ, तब जब सुना कि फायरिंग चालू हो गया फिर उसको घर में रोक दिया हम लोग। हाँ, फिर हम लोग को मालूम नहीं कि फायरिंग क्या चीज़ है यह। फिर सुबह आके जब डेरा उसको पास डेरा आया था ये सब जाएगा इकट्ठा में, तो आके देखा कि पेटी पड़ा हुआ है। हाँ, पैटी पैकिंग के मोबाइल पड़ा हुआ, पेटी पड़ा हुआ। फिर पूछा कि ये करने को लोग कहाँ गया कहाँ, तो बोलता कि तो 5 हज़ार तो जख्म हो गया। तब हम लोग का टेंशन ख़त्म हो गया कि क्या हो गया। फिर मैं घर के आया, फ़ोन बोलते तुम कहाँ आए, बोलते तुम्हारा आदमी मर गया। बोले हाँ, कभी नहीं हुआ। बोलते हाँ मर गया, बस यही बस सुना। पता नहीं चला, 7 बजे पता चला हमको।
गांव के नंबरदार अब्दुल सलाम भट्ट का कहना था।
तो बाद में पता चला कि यहाँ पर बिहारी 4-5 थे एक डेरे में, उनको मारा गया। फिर आर्मी आ गई आधे घंटे के बाद, तकरीबन 8 बजे उन्होंने मुझे बुलाया घर से कि इधर ऑन स्पॉट। फिर हम यहाँ से अड्डे में आ गए, फिर वहाँ चले गए उधर स्पॉट पर। फिर हमने देखा वहाँ पर 5 बंदे पड़े हुए थे, बिहारी थे, बंगाली थे वो पता नहीं, वो मारे गए थे। फिर आर्मी ने बोला कि इनको भर दो गाड़ी में।
गांव के एक दुकानदार मंजूर अहमद भट्ट ने बताया कि हमने सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुनी और तब से हम सहमे हुए हैं। गांव के एक और नागरिक अब्दुल रशीद भट्ट का कहना था कि हम इस घटना से बहुत दुखी हैं। बीते 15 दिनों में अभी तक 11 गैर कश्मीरी ड्राइवरों, मजदूरों और सेब व्यापारियों को संदिग्ध चरमपंथियों ने अलग अलग हमलों में मार दिया है। पुलिस ने इन हत्याओं के लिए चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है, जिसके बाद से कश्मीर में कर्फ्यू, प्रतिबंध और हड़ताल से आम जिंदगी अस्त व्यस्त होकर रह गई है। अभी तक कश्मीर में इंटरनेट और प्रीपेड सेवाओं को बहाल नहीं किया गया है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
कश्मीर के बाद रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां अभी तक सरकार बनती नहीं दिख रही है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को BJP के विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उन्होंने कहा कि BJP शिवसेना के साथ जल्द ही सरकार बनाएगी। इस मामले पर ताज़ा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मुंबई, जहाँ BBC संवाददाता मयूरेश कोन्नूर मौजूद हैं। मयूरेश, हमें बताएं कि आज क्या पूरा घटनाक्रम हुआ मुंबई में।
आज सबसे पहली अहम बात ये हुई कि देवेंद्र फडणवीस को BJP के जो सारे चुनकर आए हुए विधायक हैं, इन्होंने यूनानिमसली लीडर ऑफ द हाउस डिक्लेयर कर दिया, इलेक्ट कर लिया। तो ये तब तय हो चुका कि देवेंद्र फडणवीस ही BJP की तरफ से आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और अगर BJP की सरकार बनती है तो वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि शिवसेना जो है वो अभी तक अपना मन नहीं बना पाई है कि क्या वो BJP से ले पाएगी, क्या उनको हासिल होगा और क्या अब भी वो मुख्यमंत्री पद पर अड़ी हुई है। तो एक तरफ BJP में जब देवेंद्र फडणवीस ने भाषण कहा तो उन्होंने ये कहा कि चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, अफवाहें तो बहुत गर्म हैं, लेकिन फिर भी ये महायुति यानी जो शिवसेना और BJP का गठबंधन है उन्हीं की सरकार बनेगी, ये तो उन्होंने कह दिया और कुछ भी हो जाए। लेकिन हालांकि BJP ने ये नहीं कहा, कुछ भी नहीं अब तक बताया कि क्या वो करेंगे, क्या शिवसेना से उनकी बातें हो रही हैं, क्या अगर खुले तौर पर नहीं हो रही है तो क्या बैकडोर टॉक्स हो रहे हैं। शिवसेना जो मांग की है कि उन्हें 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद उनको दिया जाए, उनको बढ़ाकर कुछ कैबिनेट सीटें बढ़ा दी जाए, तो इसके ऊपर क्या कहा, इसमें कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम जो जब योग्य समय आएगा तब हम बताएंगे। तो ये तो आज दिन में होता रहा, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना अब उन्होंने अपना लीडर नहीं चुना है। कल शिवसेना की अहम बैठक बुलाई गई है, सारे उनके चुने हुए विधायक आएंगे और तब उद्धव ठाकरे दोपहर बाद शिवसेना का जो लीडर ऑफ द हाउस होगा वो डिक्लेयर करेंगे। अगर वो आदित्य ठाकरे जो पहली बार चुनकर आ रहे हैं उनका नाम घोषित करते हैं तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि हाउस ऑफ द लीडर ही जाके मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनता है। तो शिवसेना मुख्यमंत्री पद की उनके दावेदारी कल के बाद भी सामने रहेगी। लेकिन अब संजय राउत की तरफ से उन्होंने शाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने भी ये बयान दिया कि महाराष्ट्र की जनता का हित उसी में है, अगर शिवसेना और बीजेपी साथ में आए तो ये भी चर्चा हो रही है कि क्या शिवसेना ने अपना रुख थोड़ा नरम किया है, क्या वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब भी इतने दिनों बाद भी 24 तारीख को सब चुनाव के रिजल्ट आए हैं, अब भी सरकार किसके बनेगी, कब बनेगी,
ये भी साफ नहीं
नजर नहीं दिख रहा
जी। मयूरेश, उधर देखा जा रहा है कि एनसीपी में भी विपक्षी दल का नेता कौन हो इसको लेकर भी अभी कोई चुनाव नहीं हो पाया है, इस पर क्या ताजा जानकारी है?
ताजा जानकारी यह है कि उन्होंने यूनानिमसली अजित पवार जो है उनको विपक्ष का जो भी उनका लीडर ऑफ द हाउस है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अभी अभी कुछ देर पहले एनसीपी की बैठक हुई और अजित पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। हालांकि उनके ऊपर कुछ आरोप भी लग चुके हैं और इंक्वायरी भी है ईडी की, हालांकि इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट की जो इंक्वायरी है उसमें उनका भी नाम है।
पार्टी के अंदर खाने भी कुछ नेताओं के नाम उभर रहे थे अजित पवार की टक्कर में,
क्योंकि जयंत पाटिल जो है जो एनसीपी के स्टेट पे उनका नाम आ रहा था, धनंजय मुंडे हैं जो पिछली बार अभी पहली बार विधानसभा में आए हैं लेकिन पिछली बार विधान परिषद में एनसीपी के मुख्य नेता थे, लेकिन ये दोनों नाम बाहर गए। हालांकि कुछ देर पहले, कुछ चुनाव से पहले अजित पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया था, वो कुछ खफा थे, उनके कुछ प्रॉब्लम थे, शायद उसी की वजह से उनका नाम फिर से आगे आया है
और आखिरकार उनको
वो हमेशा आगे
जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारियों के लिए मयूरेश कोनोर। श्रोताओं, अब समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहां का। चिली में लगभग 2 सप्ताह से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। 18 अक्टूबर को मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी का कुछ हजार छात्रों ने विरोध शुरू किया था, जिसके बाद लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे। मामला बढ़ने पर राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने प्रदर्शनकारियों से माफी मांगी और इमरजेंसी लगाने के अपने फैसले को वापस लिया। उन्होंने कैबिनेट में बदलाव किए और आर्थिक सुधार करने का भी ऐलान किया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1990 के बाद पहली बार यहां इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। क्या किराए में बढ़ोतरी ही इतने बड़े प्रदर्शन का कारण है? आज दुनिया जहां में इसी की पड़ताल कर रही है मानसी दास।
दुनिया जहां, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में विशाल समुद्र तट से सटा चिली लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। इस देश को आर्थिक उदारीकरण के उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। करीब 1,80,00,000 की आबादी वाला ये देश बीते 2 सप्ताह से सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण खबरों में है। 6 अक्टूबर को जब चिली सरकार ने राजधानी सेंटियागो में मेट्रो के किराए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके विरोध की आवाजें दुनिया भर में गूंजेंगी। सरकार की दलील थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की मुद्रा लुढ़क रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ये सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे। स्कूल और यूनिवर्सिटी छात्रों ने मेट्रो किराए के बढ़े हुए पैसे नहीं देने का फैसला किया और वो मेट्रो स्टेशनों पर लगे बैरिकेड लांघने लगे। पुलिस के साथ उनकी छोटी मोटी झड़पें भी हुई। 18 तारीख को मामला तब गंभीर हो गया जब हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली कंपनी की इमारत को आग के हवाले किया और बसों को जला दिया। बढ़ते विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने इमरजेंसी लगा दी।
El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo.
हम इमरजेंसी लगा रहे हैं और इसका उद्देश्य है कानून व्यवस्था लागू करना, सेंटियागो शहर के लोगों के लिए शांति बनाए रखना और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को बचाना और सभी के हकों की रक्षा करना।
No respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas.
सड़कों पर हथियारबंद सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखने लगी, लेकिन न केवल विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वालों की संख्या बढ़ती रही बल्कि ये विरोध अन्य शहरों में भी फैलने लगा। चिली में मामला केवल मेट्रो किराए में बढ़ोतरी का नहीं था। दरअसल सरकार के एक फैसले ने देश में गैर बराबरी और बढ़ती महंगाई पर चर्चा छेड़ दी थी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज के प्रोफेसर अब्दुल नाफे बताते हैं, यहाँ आर्थिक असमानता अधिक है जो लोगों के रोष का कारण है।
चिली को आर्थिक उदारता का एक उदाहरण माना जाता है सारी दुनिया में। उसके कारण क्या है कि चिली में आर्थिक असमानताएं और आय की असमानताएं बहुत बढ़ गई हैं। हालत यहाँ तक हो गई है कि वहाँ की जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन अपने सारी आय का बहुमत जो है अक्सर हिस्सा वो टैक्सेस के रूप में पे करता है। सच बात यह उसकी कमर टूट चुकी है टैक्स दे देकर। हम ये कहते हैं, मैं खुद चिली गया हूँ, वहाँ के जैसा हमारे हाईवे बहुत अच्छे हैं। जो विदेश निवेश लेकर के आते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने सुपर हाईवे बना दिए, लेकिन आपकी जनता उन पर ट्रेवल नहीं कर सकती। टोल टैक्स लगता है कि आप कहीं आने जाने के लायक नहीं बचे, और हर चीज प्राइवेटाइज जो कर दी, हालत ये कर दी है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो बढ़िया, और अगर नहीं है तो सरकारी जो स्कूल और कॉलेजेस बचे हैं कुछ ही हैं और उनमें कोई जान बची नहीं है।
ब्राजील में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना कहते हैं कि चिली की स्थिति ब्राजील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और अन्य लैटिन अमरीकी देशों से बहुत अलग नहीं है।
इन सारे देशों में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है आर्थिक असमानता। जो लोग अमीर हैं बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो गरीब हैं बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो इस वक्त जो चिली के राष्ट्रपति हैं पिनेरा, इन दो साल से करीब की सरकार है, इन्होंने ऐसी नीतियां लागू की हैं जिससे असमानता बढ़ी है, लोगों पे आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा है, बिजली के बिल लोगों के बहुत ज्यादा हो गए हैं, पानी का बिल बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक तरफ तो गरीबी है और दूसरी तरफ लोगों को ऐसा मजबूर किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा वो पैसा दें जो पब्लिक सर्विसेज उनको इस्तेमाल करने के लिए।
चिली में 1970 से 73 के बीच कम्युनिस्ट के झुकाव वाली साल्वाडोर आयंदे की सरकार थी। ऑगस्टो पिनोचे के नेतृत्व में हुए सैन्य विद्रोह के बाद इस सरकार का तख्ता पलट हुआ। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सिंह कहती हैं,
आयंदे वेलफेयर स्कीम्स निकाल रहे थे लेकिन वो उनका भी इकोनॉमी पे उतना असर नहीं हो पाया, उनको हटा दिया गया। पिनोचे के दौरान इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी और उन्होंने ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया था, लोकल इंडस्ट्रीज को टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म जो कहते हैं टैरिफ प्रोटेक्शन, वो हटा दिया गया था, और प्राइवेटाइजेशन खुली तरह कर रहे थे, सारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वो प्राइवेटाइज कर दिए गए थे।
९९ में पिनोचे की सत्ता खत्म हुई। इसके बाद कभी लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में रही तो कभी सोशलिस्ट पार्टी। दिलचस्प बात यह है कि देश में अब भी 1990 का ही संविधान लागू है जो पिनोचे के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था। प्रोफेसर अब्दुल नाफे बताते हैं,
संविधान की कुछ मूल धाराएं ऐसी है कि आप उदारवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं ला सकते और उसको बल्कि बढ़ावा देंगे। हर चीज प्राइवेटाइज इस कदर हो गई, वहाँ की मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही। ये तो मिलिट्री ने बनाया और मिलिट्री जो थी अपने अधिकार और अपने जो उनके काम की चीजें थी वो उसके अंदर रखे चले गए, बड़े बड़े पूंजीवादी थे उनका पक्ष रखे चले गए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आम नागरिक के लिए हो।
प्रदर्शनकारी देश के संविधान को खत्म करने और सामाजिक आर्थिक सुधार लागू करने की मांग कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। शोभन सक्सेना कहते हैं,
अभी क्या हुआ, पिछले कुछ सालों से जब से पिनेरा की सरकार हुई है इन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग उसको काफी काटा है, इन्होंने पब्लिक सर्विसेज को बहुत काटा है। इसकी वजह से लोगों में काफी रोष है और चाहते हैं कि संविधान में ऐसा परिवर्तन हो कि जो सरकार जो पैसा खर्च करती हो, चाहे वो शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो, इन सब चीजों पे सरकार पैसा खर्च करे और संविधान में ऐसी धारा लागू हो।
22 अक्टूबर को राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने प्रदर्शनकारियों से माफी मांगी और सामाजिक और आर्थिक बदलाव करने का भी ऐलान किया।
Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas.
हम पेंशन बढ़ाने, दबाव की कीमतें कम करने, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर और सस्ती करने के लिए नए कदम उठा रहे हैं। और भी कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, जैसे कि बेहतर नौकरियां, अच्छी सैलरी, कम कीमत पर बिजली और मूलभूत सुविधाएं।
En los precios de servicios básicos como la electricidad o los peajes.
लेकिन राष्ट्रपति के वादों के बावजूद विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रोफेसर अब्दुल नाफे कहते हैं,
ये काफी लिबरल डेमोक्रेसी है और उसकी मिसाल जो है अब उन्होंने खुद ही अपने आप को बता दिया कि हम देखो क्या कर रहे हैं। लोग कई को लगता है डेमोक्रेसी आएगी, नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तो शायद उसमें हमें कुछ राहत मिले। यही कारण है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, यही कारण है वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन करें।
शोभन सक्सेना कहते हैं कि सरकार पर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार ने सुधारों की बात की है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर अब भी फौज तैनात है।
इतना गुस्सा है वहां पे, इतना रोष है और इतनी समस्याएं हैं लोगों के जीवन में कि लोग उनकी जो छोटी छोटी जो उनके ये आप कह सकते हैं जेस्चर्स हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। वो एक बहुत ही मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो चिली में अभी हो रहा है वो एक लगभग आप कह सकते हैं कि एक तरह से वहां पे क्रांति हो रही है उस सरकार के प्रति, उस आर्थिक असमानता के विरोध में और जो उसका सामाजिक ढांचा है उसके विरोध में।
जानकार मानते हैं कि चिली की सड़कों पर हो रहे परिवर्तन की गहरी छाप अन्य देशों पर भी पड़ेगी। वो कहते हैं कि उदारीकरण की नीति अपनाने वाले देशों के लिए चिली एक ऐसा उदाहरण है जिससे समय रहते बहुत कुछ सीखा जाना चाहिए। डॉक्टर प्रीति सिंह के शब्दों में,
इंडिया को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो बढ़ रहा है, जिस तेजी रफ्तार से हम भी बढ़ रहे हैं, वो किस तरह से सब वर्गों में बांटा जाए।
मानसी दास, बीबीसी, दिल्ली।
दुनिया जहां आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। और अब समय है खेल समाचारों का। खेल जगत की जानकारियां देने के लिए मेरे साथ हैं मौजूद ज्योतिका जी। ज्योतिका सिंह, बताएं क्या हलचल है इस वक्त?
जी, क्रिकेट से शुरुआत करना चाहूंगी और ओपनर डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के नाबाद अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने आज दूसरे T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका को 9 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज के अंतर्गत होने वाले तीसरे T20 से पहले ही उसका सीरीज पर कब्जा तय हो गया है। तीसरा T20 इंटरनेशनल 1 नवंबर को खेला जाना है। ब्रिस्बेन में खेला गया दूसरा T20 भी पूरी तरह से एक तरफा साबित हुआ। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंकाई टीम 19 ओवर में 117 रनों पर ढेर हो गई। जवाब में मेजबानों ने 13 ओवर में केवल 1 विकेट खोकर ये स्कोर हासिल कर लिया। वार्नर ने नाबाद 60 और स्मिथ ने नाबाद 53 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। सीरीज के पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने 134 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की और इस मैच में वार्नर ने नाबाद शतकीय पारी खेली थी।
यानी नाबाद का वार्नर का इस बार फिर धमाल रहा है।
जी,
पारी खेली।
और वहीं दूसरी ओर नामीबिया ने ICC T20 विश्व कप क्वालिफायर में ओमान को हराकर पहली बार अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें नीदरलैंड्स भी जगह बनाने में सफल रहा। ऑलराउंडर जे.जे. स्मिथ ने सिर्फ 25 गेंदों में 59 रन की शानदार पारी खेली, जिसके बूते नामीबिया ने ओमान को 54 रनों से शिकस्त देकर अक्टूबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप की 8 टीमों के पहले दौर के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है।
इसके अलावा क्रिकेट के अलावा कुछ और जानकारी?
जी, मेरे पास आज फुटबॉल भी है और
एकदम तुरंत
इंग्लिश फुटबॉल टीम, इंग्लिश फुटबॉल लीग की मैं बात करूं अगर तुरंत, तो आज चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड आमने सामने
होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया खेल की खबरों के लिए ज्योतिका सिंह। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। यूरोपीय संघ के 23 सांसदों के जम्मू और कश्मीर दौरे पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी पार्टियों ने पूछा कि देश के सांसदों और एक्टिविस्टों को तो मोदी सरकार कश्मीर नहीं जाने दे रही, लेकिन विदेशी सांसदों को कश्मीर भेज रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट पर बने गतिरोध को तोड़ने के लिए मध्यावधि चुनाव के लिए लाए जा रहे विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के 13 दिनों बाद लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। उनकी ये घोषणा हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू होने के तुरंत बाद आई। व्हाइट हाउस के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि जो बाइडेन और उनके बेटे की जांच के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव बनाया था और वो उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। عراق کے پردھان منتری عدیل عبد المہدی پر استعفیٰ دینے کا دباؤ بڑھ رہا ہے. شیعہ دھارمک نیتا مقتدا الصدر نے پردھان منتری سے استعفیٰ دینے اور مدھیہ اودھی چناؤ کرائے جانے کی مانگ کی ہے. بی بی سی سماچار.
دن بھر میں آج اتنا ہی. اسٹوڈیو کا تکنیکی پکش سنبھالا روی شنکر کمار نے. اگلی ملاقات صبح 6:30 بجے نمسکار بھارت میں ہوگی. تب تک آپ کے ساتھ ہے ہماری ویب سائٹ bbchindi.com. محمد شاہد کو سبھی ساتھیوں کے ساتھ دیں انومتی. نمسکار.